शासक मनु श्लोक संख्या 19 से 29 तक। तो श्लोक संख्या 29 पोर्ट में लिखा है, पहले इसका उच्चारण या पहले हम सब श्लोकों के अनुवाद पढ़ देते हैं, फिर हम इस पे ओके। श्लोक संख्या 19 का अनुवाद इस प्रकार है, अग्नि का पुत्र सर्वोच्च दूसरा मनु बना, उसके अनेक पुत्रों में धीमत सुषेण तथा रोचिष्मत प्रमुख थे। तात्पर्य, मनवंतरा मनुदेवा मनुपुत्रा सुरेश्वरा ऋषो शाश्वतो हरिश्च हरे शर्मिदम उच्यते। भगवान के अनेक अवतार हैं, मनु मनुपुत्र स्वर्ग लोकों का राजा तथा सप्तऋषि, ये सभी भगवान के अंश अवतार हैं। स्वयं मनु उनके पुत्र प्रियगण तथा अवतारपात, दक्ष द्वारा उत्पन्न देवता तथा मरीचि जैसे ऋषि, ये सभी स्वयंभू मनु के राज्य काल में भगवान के अंश अवतार थे। उस काल में भगवान के अवतार यज्ञ ने स्वर्ग लोकों का शासन का राज्यभार संभाला। अगला मनु स्वरोचिष था। अगले 11 श्लोकों में मनुओं ऋषियों तथा देवताओं का और भी विस्तृत वर्णन हुआ है। श्लोक संख्या 20। स्वरोचिष के शासनकाल में इंद्र का पद यज्ञ पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य प्रधान देवता बने, उर्ज स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि हुए, ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। श्लोक संख्या 21। वेदशिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। श्लोक संख्या 22। विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। श्लोक संख्या 23। हे राजन, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन सृंजय तथा यज्ञ मंत्र मुख्य थे। श्लोक संख्या 24। तीसरे मनु के शासनकाल में वशिष्ठ के पुत्र प्रमद और अन्य पुत्र सप्तऋषि बने। सत्यगण वेद शुद्धगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। 25। भगवान इस मंत्र में धर्म की पत्नी सुमृता के कर्म से प्रकट हुए और सत्य से नाम से विख्यात हुए। वे सत्यवेत नामक के अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। 26। सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। 27। तीसरे मनु उत्तम का भाई, जो तामस नाम से विख्यात था, तथा चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, जिनमें पृथु ख्याति नर तथा केतु प्रमुख थे। 28। तामस मनु के शासनकाल में सत्यगण हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा त्रिशिक था। सप्तऋषि के धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। श्लोक संख्या 29। देवा वृद्र भृत्यो नाम विद्रतेस्तनुयान्विपा नष्टा कालेन येर्वेदा विद्रता स्वेन तेजसा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की देवा देवतागण वैधृत्या वैधृतिगण नामक नामक विधृते विधृति के तनया पुत्र नृप हे राजा नष्ट नष्ट हो गए थे कालेन समय के प्रभाव से ये जिससे वेद वेद वेद्रिता सुरक्षित थे स्वेन अपने तेजस बल से। हे राजन तामस मनमंथन में विधृति के पुत्र भी जो वैधृति कहलाते थे देवता बने। चूंकि कालक्रम से वैदिक स्वत्व विनष्ट हो गया था अतः इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक स्वत्व की रक्षा की। तात्पर्य तामस मनमंथन में दो प्रकार के देवता थे जिनमें से एक वैधृति कहलाते थे। देवताओं का कार्य वेदों के स्वत्व की रक्षा करना है। देवता शब्द वेदों के स्वत्व को वहने वहन करने वाले का सूचक है जबकि राक्षस वे हैं जो वैदिक स्वत्व का उल्लंघन करते हैं। यदि वेदों का स्वत्व जाता रहे तो समग्र ब्रह्मांड अशांत हो उठता है। अतः देवताओं के साथ साथ राजाओं तथा सरकार के सहायकों का कर्तव्य है कि वेदों के स्वत्व को पूरा संरक्षण प्रदान करे अन्यथा मानव समाज में अशांति छा जाएगी और तब उसमें शांति अथवा समृद्धि नहीं रह सकती। ओम अज्ञानस्त निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखा हितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये जो प्रसंग चल रहा है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु, तो
पीछे हमने लगभग 11-12 श्लोक पढ़े। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय हैं भागवतम पुराण के, दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि भागवतम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें हमें उसका हमारे पास ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसमें भागवतम में उत्तर ना हो। सारे 10 विषयों में हमारे हर प्रकार की जिज्ञासा का उत्तर हमें मिलता है। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मोदय मन मंत्र ईशान कथया निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 विषय है श्रीमद् भागवतम के। तो जैसे 5वें स्कंध में स्थान की चर्चा हुई, अलग अलग पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर बताया गया। 6वें स्कंध में पोषण की, 7वें स्कंध में ऊर्ति यानी कि किसी भी कार्य को करने का जो प्रेरणा है, और 8वें स्कंध में मनमंत्र। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो हरेक मनु के उसमें अवतार लेते हैं भगवान, उनके बारे में बताइए। तो उसके बाद देखते हैं कि भगवान जैसे हर मनवंतर में मनु के पुत्र देवतागण और सप्तऋषि, ये पूरी की पूरी कैबिनेट बदलती है। तो कोई साधारण व्यक्ति बोलेगा कि भक्त को इन चीजों से क्या जानना है, ना क्या जरूरत है। आप देखिए 7 दिन का उनके पास समय था परीक्षित महाराज के पास, तो लगभग 4-5 दिन तो बीत गए होंगे। आप पूछ रहे हर मनमंत्र के बारे में बताइए, इतनी डिटेल में जा रहे हैं, क्या जरूरत है। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में मॉर्निंग वॉक पे थे, तो उनके एक भक्त साथ में थे। प्रभुपाद ने बोला कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे मालूम होता है कि उसकी सरकार, देश की सरकार कैसे चल रही है। और फर्स्ट क्लास मैन नोज दैट, जो थर्ड क्लास व्यक्ति है वो उसको कोई लेना देना नहीं है कि सरकार कैसे चल रही है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है उसको मालूम होता है कि देश की सरकार कैसे चल रही है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण होते हैं उनको जानना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का प्रशासन कैसे हो रहा है, यह आवश्यक है। शुद्ध को नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण होगा उसको मालूम होना चाहिए ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई, इसका प्रशासन कैसे चल रहा है, इसलिए हमारे लिए भी जानना जरूरी है। इसलिए भागवत में 3रे स्कंध में भी विदुर मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि मुझे स्वयंभू मनु के परिवार के विषय में बताइए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हां विदुर जी मैत्रेय मुनि से किसी की सेक्स लाइफ के बारे में जानना नहीं चाह रहे, क्योंकि वंशावली बताओ, वो जानना चाह रहे हैं कि मनु ने क्या किया, कैसे प्रशासन किया। ये बहुत जरूरी है जानना कि ये यूनिवर्सल मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, क्या उसका उद्देश्य है, और उसको जान के हमें क्या लाभ होगा। इतने सारे नाम आपको पढ़वाए गए, आपका क्विज ले पूछे कौन कौन से नाम पढ़े गए तो हमें याद भी नहीं होगा, है ना, अजीब अजीब से नाम है। तो यहां पे आठवें स्कंध में हर मनु के काल में भगवान का कौन सा अवतार हुआ और उनका विशेष कार्य क्या रहा, ये आगे बताया जाएगा। और इसी बीच में जब चौथे मनवंतर पे आएंगे, तामस मनवंतर पे, तो सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे कि इस मनवंतर में हरि का अवतार हुआ जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। वो आगे बढ़ रहे होंगे, परीक्षित महाराज रोक लेंगे एक मिनट के लिए, ये कैसे गजेंद्र की रक्षा की बताइए। तो फिर गजेंद्र की कथा, इसी रंग से आगे वामन अवतार की कथा, बीच में रोक के इतना अटेंटिव हियरिंग कर रहे सुखदेव गोस्वामी। थोड़ा एक मनु के बीच थोड़ा सा बोलेंगे, उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहेंगे। तो पहले मनु कौन थे, स्वयंभू मनु। दूसरे मनु कौन थे, स्वरोचिष। तीसरे मनु, उत्तम। और चौथे मनु, तमस। वेरी गुड। पहले मनु ने किसने अवतार लिया था, यज्ञ। यज्ञ ने क्या किया था, हाँ स्वयं मनु की रक्षा की थी। दूसरे मनु स्वरोचिष में किनका अवतार हुआ था, विभु। विभु ने क्या किया था, वो ब्रह्मचारी रहे थे और 88,000 ऋषियों को उन्हें ज्ञान दिया था। तीसरे मनवंतर में किसका अवतार हुआ था, सत्य से। और चौथे मनवंतर में किनका अवतार हुआ, हरि। तो अभी जो इस श्लोक में ये चौथे मनु के काल की बात हो रही है, पहले 19 नंबर श्लोक में स्वयंभू मनु के विषय में बात हुई थी, और उसके बाद से सरोचिष मनु, और फिर इस जंग से चौथे मनु, उत्तम मनु और चौथे मनु तक पहुंचे। और हरेक मनु के काल में कौन सप्तऋषि बने, कौन देवतागण बने, कौन मनुपुत्र हुए, ये सदा विस्तार में बताया गया है। एक बार श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में तमा कृष्ण महाराज और पुष्ट कृष्ण प्रभु के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अप्रैल 1975 की बात है, तो तमाशा महाराज ने पूछा कि प्रभुपाद आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभुपाद ने हाँ पूछिए। प्रभुपाद आपने बताया है कि कृष्ण अपना विस्तार पहले बलराम जी में करते हैं, फिर बलराम जी संकर्षण, संकर्षण से नारायण, फिर संकर्षण, तो दो दो संकर्षण क्यों? तो प्रभुपाद बोला दो क्यों, हजारों संकर्षण? तो बोले हजारों संकर्षण क्यों? प्रभुपाद ने बोला इस पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करना कोई आसान थोड़ी है, आपसे एक छोटा सा मंदिर तो संभलता नहीं है, वो एक ब्रह्मांड का मैनेज करना है। प्रभुपाद बोले अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये काम हो गया तो आप क्या कहते हैं? मैंने उसको बताया था। उससे पूछे वो गए, बोला मैंने उसको बताया था। तो आपके यहां तो एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर होता है, ऑर्डर एक्सपेंड करता रहता है, और आप बोलते मैंने उसको बताया, ये कहकर हम सो जाते हैं आराम से। बोले कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण पूरे रूप से अपना विस्तार करते हैं, कृष्ण पूरा इंश्योर करते हैं कि वो काम होना चाहिए, है ना। इसलिए कई बार जब कृष्ण देखते हैं कि कोई युक्त व्यक्ति नहीं है इंद्र का कार्य संभालने के लिए या ब्रह्मा का कार्य संभालने के लिए या मनु बनने के लिए, तो कृष्ण स्वयं मनु बन जाते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं, इंद्र बन जाएंगे। कृष्ण ये नहीं कह सकते मैंने ब्रह्मा को बोल दिया काम हो जाएगा, है ना, फिर सो गए। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण ने अपना विस्तार किया, जैसे स्वयंभू मनु के केस में कि काल ने बताया जा रहा है कि कृष्ण ने अपना विस्तार किया और वो मनु, मनुपुत्र, देवतागण सभी बन सकते हैं। तो ये प्रभुपाद तमाक्षी महाराज को बता रहे थे। तो साथ में फिर भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की जो योजना है, कृष्ण की सृष्टि है, पूर्ण है, तो कृष्ण ऐसे करके कार्य नहीं छोड़ सकते, अपना विस्तार करते हैं। तो साथ में पुष्ट कृष्ण थे, उन्होंने बोला कि अगर कृष्ण ही सब कुछ है तो फिर लोग उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, उनकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं, जब सब कुछ ही कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये उनकी स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता भी कृष्ण देते हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जीवन सुमित्र महारानी के, कि ये स्वतंत्रता, भूलने की स्वतंत्रता भी कृष्ण ही देते हैं। मत्ता स्मृति का अपोहनम च, ये कोई भूलना चाहता है तो कृष्ण उसको भुला देते हैं। तो हालांकि सब कुछ कृष्ण का ही विस्तार है, लेकिन फिर भी जो जीव उनको भूलना चाहता है, उनकी अवहेलना करना चाहता है, कृष्ण उसको वो स्वतंत्रता देते हैं कि जीव उनकी अवहेलना कर सके। तो सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे जो प्रशासन चल रहा है, इसके विषय में जाना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड जैसे किसी कंपनी का मैनेजमेंट है, उस कंपनी के मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होगा, क्या पर्पज होगा? क्या हो छोटी लाइन, प्रॉफिट ही कम है, खाली प्रॉफिट कम होना ही कंपनी का उद्देश्य होता है? हाँ जी, एक्सपेंड करें, सीधी बात, मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी का उद्देश्य है उनको पूरा करें, उसमें प्रॉफिट कमाना एक उद्देश्य हो सकता है ना। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है किस लिए है? कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इसी ढंग से ये पूरे ब्रह्मांड का प्रशासन है, उसका क्या उद्देश्य होगा? ब्रह्मांड की सृष्टि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो इस पूरे सृष्टि क्यों होती है, उसका क्या उद्देश्य है? लोग पहले गाना सुन रहे, दुनिया बनाने वाले काहे को तूने दुनिया बनाई, बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि दुनिया क्यों बनाई गई, सृष्टि क्यों की गई। किसी को भी शायद पता नहीं होगा, आप सड़क पर जा रहे व्यक्ति से पूछ लीजिए, प्रभु एक मिनट के रुकिए प्लीज, ये सृष्टि क्यों बनाई गई? पागल की बात कर रहे हो, सृष्टि क्यों बनाई गई, काम करने दो हमें अपना। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, सृष्टि क्यों बनाई गई, क्यों की गई सृष्टि, पर्पज क्या है क्रिएशन का? हाँ, भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की ताकि जो बद्ध जीव है, जो भगवान से विमुख हो चुके हैं, उनको एक अवसर प्राप्त हो कि अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम वापस जा सके। ये पूरे सृष्टि का क्रिएशन का पर्पस है। तो सृष्टि का ये क्रिएशन का ये उद्देश्य है, तो जो पूरा मैनेजमेंट होगा उसका क्या उद्देश्य होगा? यही होगा कि किसी ना किसी ढंग से संसार में जो रहने वाले जीव हैं, उनका इस ढंग से प्रशासन किया जाए, उनको ऐसी सुविधाएं दी जाए कि वो हो अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम वापस जा सके। और जो सृष्टि के अंदर रहने वाले जीव उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी सृष्टि के उद्देश्य को समझे। और हमारे हर कार्य के पीछे यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे हर कार्य का जो समन्वय पूरा सृष्टि के उद्देश्य के साथ होना चाहिए। शुड बी इन हार्मनी विद द पर्पस ऑफ द क्रिएशन। जो सृष्टि के उद्देश्य के साथ हमारे अपने जो उद्देश्य है वो तुम पे समन्वय होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे अपने जीवन के उद्देश्य कुछ और होंगे और हमें जिसने क्रिएशन में भेजा उस क्रिएशन का उद्देश्य कुछ और है तो क्या होगा? डिसहार्मनी होगी और पूरे संसार में उथल पुथल मचेगी। और यही आज के इस कलयुग में उथल पुथल मचने का यही कारण है। सामान्य जन को पता ही नहीं कि सृष्टि क्यों की जाती है, उसके अपने कुछ अलग ही उद्देश्य है और सारे उद्देश्य भगवान ने जो सृष्टि के किए उसके पीछे उद्देश्य से कोई हार्मनी में नहीं है, इसलिए सब जगह लड़ाई चल रही है। जब हमारा उद्देश्य इस सृष्टि के उद्देश्य के साथ मैच करेगा तो ये प्रकृति हमारे साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेगी और सब जगह समृद्धि ही समृद्धि होगी, संपन्नता ही संपन्नता होगी। लेकिन जब हमारे उद्देश्य और भगवान के सृष्टि के उद्देश्य में विरोधाभास होगा, विरोध होगा, तो फिर सब जगह लड़ाई झगड़े ही होंगे। तो जानने के लिए कि किस जंग से इस पूरे ब्रह्मांड का प्रशासन होता है, हमें ब्रह्मांड की रचना के उद्देश्य के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। तो चाहे मनु हो, मनुपुत्र हो, देवतागण हो, देवतागण के अंदर पृथ्वी लोक के राजा हो, पृथ्वी लोक के राजा के अंदर मंत्रीगण हो, मंत्रीगण के अंदर और प्रशासक हो, हर किसी का उद्देश्य यही है कि हमारा हर कार्य भगवान के उद्देश्य के समन्वय होना चाहिए, उसके हारमोनी में होना चाहिए। यह हमें अच्छे ढंग से याद रखना चाहिए। तो देखते हैं कि इसको फिर कैसे इंश्योर किया जाएगा कि जो ये ब्रह्मांड के प्रशासक हैं वो ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान बताते हैं, एवं रस्वते योगम प्रोक्ता हम अभ्यम रस्वा मनवे प्राहु मनु इक्ष्वाकु अभ्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उद्देश्य सूर्य देव रस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान ने सबसे पहले विवस्वान सूर्य के पिता विवस्वान को चुना जिनको उन्होंने यह उपदेश दिया। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विवस्वान को इसलिए चुना क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा है, यह चक्षु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सर्वमूर्ति एष तेजा। जो सूर्य है वो सभी इस ब्रह्मांडों ग्रहों का राजा है, तो सबसे पहले उनको ज्ञान दिया और फिर सूर्य के देवता ने किसको दिया? मनु को, और मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे। इस ढंग से पूरा जो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं सूर्य, उससे ज्यादा जो फिर मनु और फिर पृथ्वी के राजा और फिर आगे, और इस प्रकार से ज्ञान ये आगे चला। तो इस गुरु परंपरा के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के आधार पर हमें जीवन का संचालन करना चाहिए। तो भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा ही हम जो पूरे ब्रह्मांड के उद्देश्य को समझ सकते हैं और अपने प्रत्येक कार्य को इस उद्देश्य के अनुसार हम कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहां बताया गया कि दो प्रकार के जीव हैं, देवतागण और असुरगण। जो देवतागण है वे वैदिक स्वत्व, स्वत्व का अर्थ है वैदिक अथॉरिटी, उसकी रक्षा करते हैं। और जो राक्षसगण है, जो असुरगण है, वो वैदिक अथॉरिटी का उसको नहीं मानते, उसको स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी भागवतम तीसरे स्कंद में देवताओं और असुर की बड़ी सरल परिभाषा देते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार में दो प्रकार की क्रियाएं हैं, एक है इंद्र तृप्ति और दूसरा है भगवान की प्रसन्नता। जो इंद्र तृप्ति करते हैं वो असुर है, जो भगवान का गुणगान करते हैं वो देवता है। एज सिंपल एज दैट। अगर वो इंद्र तृप्ति में लिखते हैं इसका मतलब वो वैदिक स्वत्व का, वैदिक अथॉरिटी का खंडन कर रहा है, उनकी अवहेलना कर रहा है। और जो भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है, वो देवता है। तो इस भगवदगीता के संदेश के अनुसार ही हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं, इसकी बहुत आवश्यकता है। और इसलिए उनको प्रभुपाद जी कहते हैं गीता के आमुख में ही कि कृष्णा वॉन्ट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट। क्या? सरेंडर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण चाहते हैं और कृष्ण इसकी मांग कर रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूरे भगवद गीता के इस सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट यह है कि हम अपने इंद्रियों को तृप्त करके संतुष्ट नहीं रह सकते, केवल भगवान के इंद्रियों को तृप्त करके ही हम संतुष्ट रह सकते हैं। और यही गीता का केंद्र बिंदु है और इसी के प्रचार के लिए पूरी भगवद गीता बोली गई है और इसी के प्रचार के लिए हरे कृष्ण आंदोलन है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी राजागण हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी स्थिति विशेष है क्योंकि एक पूरे शरीर में सिर कितना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति पागल ना हो तो अलग बात है, अगर सिर सही स्थिति में है तभी वो सही ढंग से सबका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि सिर में क्या क्या है, सोचने की शक्ति है, तो वो सोच सकता है पूरे शरीर के अलावा, पूरे समाज के लिए, पूरे समाज की तुलना अगर एक शरीर के साथ की जाए तो सर में सोचने की शक्ति है, तो पूरे समाज के बिहाफ में सर को सोचना क्या ठीक है क्या गलत है, पूरे समाज की तरफ से सर को देखना है क्या ठीक है क्या गलत है, पूरे समाज में से उसको सुनना है, पूरे समाज की ओर से जो हेड है, जो लीडर है, उसको सूंघना है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ होने से पहले उसको सूंघ के ठीक किया जाए, और पूरे समाज के बिहाफ में उसको बोलना है। तो सर का कितना महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए सर की स्थिति को सही रखने के लिए ये भगवद गीता का संदेश है। इसलिए जो भी लीडर्स हैं, और हम देखते हैं अपने जीवन में हर व्यक्ति लीडर का रोल प्ले कर रहा है, और उस लीडर को कैसा होना चाहिए, उसको भगवद गीता का संदेश पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए, और तभी इसी के आधार पर उसको अपने पे जो निर्भर लोग हैं उनकी रक्षा करनी है, उनका मार्गदर्शन करना है, और तभी वो ब्रह्मांड के उद्देश्य के अनुसार ही, ब्रह्मांड की सृष्टि के उद्देश्य के अनुसार ही अपने पर निर्भर लोगों को वो मार्गदर्शन कर पाएगा। तो ये जानना अति आवश्यक है कि जो लीडर्स हैं उनके लिए भगवद्गीता का संदेश कितना महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि यहां श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भगवद्गीता का संदेश है, जो लीडर्स गण जो नेतृत्व करते हैं, पापा लिख रहे हैं कि सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। उस दिन सरपति को भी अपने लेक्चर बता रहे थे, एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन, इसके द्वारा हमने इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। प्रभा लिख रहे हैं शिक्षा, संस्कृति और भक्ति, इसके द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो वी हैव टू एजुकेट। इसलिए शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन के सात उद्देश्यों में पहला उद्देश्य यह है, सिस्टमेटिक प्रोपोगेशन ऑफ द नॉलेज, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। सभी लोग आजकल फंसे हुए इंद्रतृप्ति में, कलयुग में यह बहुत गलत धारणा है, अज्ञानता है कि जितना ज्यादा हम अथॉरिटीज को डिफाई करेंगे, अपनी अथॉरिटीज को बात नहीं मानेंगे, तभी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कि आज्ञा पालन करने से आनंद नहीं है, आज्ञा तोड़ने में आनंद है, है ना, इंद्रतृप्ति करने में आनंद है, तो इसलिए लोग इसी में लिप्त हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सुपीरियर नॉलेज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिना इंद्रियों को तृप्त किए हम सुखी नहीं रह सकते, हम हर किसी को आनंद चाहिए और आनंद मिलेगा इंद्रियों को तृप्त करके, लेकिन कौन सी इंद्रियां, तो भगवद्गीता के छठे अध्याय के 21-22 श्लोक में बताया गया है कि सुखानाम अतिंद्रिय, जो अतिंद्रिय है, जो हमारी असली इंद्रियां हैं उनको संतुष्ट करके, ये जो इंद्रियां हमें दिखाई दे रही है ये तो आवरण है, ये तो एक समझ लीजिए इंद्रियों के ऊपर का ढक्कन है, तो ढक्कन को संतुष्ट करके जो उस पदार्थ को संतुष्ट थोड़ी कर सकते हैं, असली जो सब्सटेंस है वो आत्मा की इंद्रियां हैं, उनको संतुष्ट करके हम आनंद का अनुभव करेंगे। तो वो संतुष्ट कैसे होंगी, जब वो ऋषिकेश सेवनम, जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें असली इंद्र तृप्ति होगी। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि ये सुपीरियर नॉलेज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, हर कोई इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहा है लेकिन अज्ञानता में, तो हमें एजुकेट करना, आप इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, ये तरीका है इंद्र तृप्ति करने का, तो उसको ये जो संशय निवृत्ति करेंगे तो हमें वास्तविक आनंद आएगा। 25 दिसंबर को जो कल था प्रभुपाद ने लेटर लिखा और प्रभुपाद कोर्ट में आता है, प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट प्रोपेगेट चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग एंड फॉलोइंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, दीज आर आवर फोर पिलर्स ऑफ सक्सेस। कि किसका प्रचार करो, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग, और साथ में चार नियमों का पालन करें, इतना करने से ये हमारे सफलता के चार मुख्य स्तंभ है। एज सिंपल एज दैट। तो एजुकेट करना, हर कोई आनंद चाहता है, आनंद होगा इंद्रियों को संतुष्ट करके, लेकिन जिस तरीके से हम इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं उसमें तो हमारे और कुंठा हो गई, वो लोग कुंठित हो ही रहे हैं। आज देखिए लोग इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हर प्रकार की सीमा को क्रॉस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो क्या करना है भक्तों को, हमें किसका प्रचार करना है कि आप चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग कीजिए, चार नियमों का पालन कीजिए, आप असली इंद्र तृप्ति कर सकते हैं भगवान की सेवा में जुड़कर। ओके, ये शिक्षा। दूसरा बताया जा रहा है कल्चर, संस्कृति। केवल शिक्षा देना ही आवश्यक नहीं है, एक संस्कृति, एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें कि जन साधारण कृष्ण भावनामृत को अनुकूल कर सके। तो वातावरण कैसे बनाया जा सकता है, अच्छे उदाहरण बनके हमें लोगों के सामने स्थापित करना पड़ेगा कि ये जो शास्त्र की बातें हैं इसके आधार पर जीवन जिया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी का एक उद्देश्य है कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना। प्रभुपाद कहते हैं हम पूरे सोसाइटी को एक रोल मॉडल दिखाना चाहते हैं कि ये जीने का असली तरीका है। तो एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति जिसमें मुख्य भगवान की संतुष्टि हो, संसिद्धि हरितोषणम। स्वयंभू मनु के जीवन काल में देखते हैं कि किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे। भागवतम के तीसरे स्कंध में वर्णन आता है, उसमें बताया जाता है कि स्वयंभू मनु ने हर प्रकार के भौतिक सुख का लाभ उठाया, लेकिन कृष्णा भानामावित होते हुए उनकी दिनचर्या कैसे रहती थी। जब सुबह उनको उठाया जाता था तो उनके मंत्रीगण क्या करते थे, भगवान का गुणगान करके उनको उठाते थे, और दिन में वो भागवत कथा सुनते थे, और रात को सोने से पहले भी भगवान का गुणगान हो रहा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसे में कोई ऐसा दिनचर्या बताएगा, सही प्रकार के सुख है लेकिन साथ में भगवत कथा है, भगवान का गुणगान है। तो निश्चित रूप से वैदिक शास्त्रों में इंद्र तृप्ति को भी संयमित रूप से करने के तरीके बताए गए हैं, जिससे क्रमशः हमारा शुद्धिकरण होता रहे। तो पूरा वर्णाश्रम को इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो ये संस्कृति ये बनाना जिससे कि हम लोगों को ये वैदिक ज्ञान आगे दे सके। और तीसरा है डिवोशन, भक्ति के माध्यम से। आप किसी के पास शिक्षा भी हो और संस्कृति भी हो लेकिन भक्ति ना हो तो हमें कोई लाभ नहीं है ना। वो तो ऐसे होगा जैसे मृत शरीर को सजाया गया हो। तो इसलिए भक्ति की संस्कृति के द्वारा, भक्ति के वातावरण के द्वारा, भक्ति का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करके हम लोगों को उत्साहित कर सकते हैं कि इसका पालन करें। इस प्रकार से यह ज्ञान राजाओं के द्वारा, लीडर के द्वारा नागरिकों तक जाता है। किसके कौन कौन से तीन तरीके हैं, शिक्षा, संस्कृति और भक्ति। तो हमें यह देख रहे हैं, देखिए हम लोगों का संपर्क अभी मनु जी से नहीं होगा, हम लोगों का संपर्क देवताओं से नहीं होता, कलयुग में तो अभी यह संभव नहीं है, लेकिन हम लोग जो प्रभुपाद जी के रूप में जो ऋषिगण हैं इनसे तो हमारा संपर्क है ही। प्रभुपाद जी ने जो हमें ज्ञान दिया, जो प्रमाणिक गुरु परंपरा से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसका अगर हम सही ढंग से पारदर्शक माध्यम बन सके इसको पहुंचाने के लिए, तो हम देवताओं का कार्य करेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जैसे कि राजा ब्राह्मणों की रक्षा करता है, ब्राह्मण भी राजाओं की रक्षा करते हैं, और इसी कॉपरेशन से पूरी सोसाइटी चलती है। और भगवान की इच्छा है कि पूरे ब्रह्मांड का जो प्रशासन होगा वो गायों और ब्राह्मणों की रक्षा के माध्यम से होगा। तो हम लोगों को नमो ब्रह्मणा हिताय जय हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो हम लोगों को ये संस्कृति आगे फैलानी है कि गाय और ब्राह्मणों की रक्षा हो, अपने जीवन, अपने उदाहरण से और साथ में इस ज्ञान के आगे बढ़ाकर। तो इसलिए हम लोग इसके महत्व को समझे कि कितना आवश्यक है इस ज्ञान को लेना और इसको आगे बांटना। एक बार हमने लेक्चर सुना है राधा गोपीनाथ प्रभुपाद, तो बता रहे थे कि जो ऋषिगण होते हैं, प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, ऋषि का अर्थ है जो दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहे, है ना। तो उदाहरण थे श्रील प्रभुपाद जी का, कितने चिंतित थे प्रभुपाद, और तभी 70 वर्ष की आयु में सभी प्रकार के आराम को छोड़ के प्रभुपाद विदेश में गए। चिंता तो संसार में बहुत से लोग करते रहते हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्या किया जाए। दिल्ली पूरे विश्व की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है और दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है पंजाबी भाग का, तो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसमें क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है। अक्सर लोगों की चिंताएं तो होती है लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता। एरिया ऑफ कंसर्न तो है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, बस ये बातें करके हम चुप हो जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, और कई बार लोग इसको ठीक करने के स्टेप्स भी उठाते हैं, लेकिन वो स्टेप्स उठाते हैं उससे समस्या और बढ़ जाती है। पेट्रोल बंद किया गया, ग्रीन डीजल लाया गया, ग्रीन डीजल आया गया, सीएनजी लाया गया, लेकिन देखने में पॉल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो कई बार लोगों की चिंताओं, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए लोग जो कदम उठाते हैं वो पूर्ण रूप से ज्ञान पर आधारित नहीं होते। यानी कि लोगों को चिंताएं तो होती हैं लेकिन उसका समाधान करने के लिए ज्ञान नहीं होता, तो कोई फायदा नहीं। तो असली जो ऋषि होते हैं उनको लोगों की चिंता भी होती है और साथ में उस चिंताओं को दूर करने के लिए ज्ञान भी होता है। पहले तो कोई दूसरे की चिंता करता नहीं, हर कोई अपने बारे में सोचता है या ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे से परिवार के बारे में। नहीं, अगर कोई दूसरे की चिंता करेगा भी तो उस चिंता को दूर करने के लिए क्या करना है ये मालूम नहीं, सोल्यूशन क्या है। जो संतगण होते हैं, ऋषिगण होते हैं, उनके पास समाधान भी होता है, वो समाधान शास्त्रों पर आधारित होता है। कुछ लोगों के पास चिंता भी होती है दूसरों को भला करने के लिए, उसके लिए ज्ञान भी होता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस ज्ञान को बांटा जाए, उस ज्ञान को बांटने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाए। एक जो असली संतगण होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस ज्ञान को बांटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। तो कौन सी 3 चीजें हो गई जो एक असली साधु है उसके पास, क्या क्या है? दूसरों के भले के लिए चिंता है, दूसरा ज्ञान है, और तीसरा करुणा है हृदय में कि इस ज्ञान को बांटा जाए। और प्रभुपाद जी ने तीनों करके दिखाए, है ना। प्रभुपाद के पास पूरे सोल्यूशन थे, प्रभुपाद बहुत दुखी थे, और हम देखते हैं प्रभुपाद के हमारे सारे आचार्यगण, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं कि अभी तो मेरा पूरा जीवन इस जंगल में जो तरह तरह के अनवांटेड प्लांट्स थे, जो खरपतवार थे, उसको साफ करने पे लग गया। मैं तो केवल रास्ता साफ ही कर पाया, उसमें कुछ लगा नहीं पाया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर जी को इतना विरोध सहना पड़ा, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बिल्कुल लुप्त हो गया था, उसके स्थान पे उल्टे सीधे सिद्धांत, अप संप्रदाय, उन सब का खंडन करके असली सिद्धांत को स्थापित करना बहुत परिश्रम करना पड़ा। आज हमें जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बड़े आराम से प्राप्त होता है, वो ये स्थिति वैसी नहीं थी, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को। तो ये असली ऋषिगण है, वो देख रहे हैं आगे भविष्य में पूरी पृथ्वी पे चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कैसे होगा, वो संदेश ही गायब हो गया, कितनी बड़ी चिंता की बात है। तो इसलिए पूरा जीवन समर्पित रहा पूर्व, हम देखते हैं आचार्यों का, इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आगे फैलाने के लिए। इसलिए हम लोगों की क्या जिम्मेवारी बनती है, प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद हम आपके प्रति कैसे कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, डू एज आई एम डूइंग, है ना। एक बार प्रभुपाद ने व्यास पूजा के अपने लेक्चर में बोला, माई डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आई जस्ट हैव ओनली वन रिक्वेस्ट। तो लोगों ने बोला ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट है, बूढ़े व्यक्ति हैं, गुरु हैं, बोलिए क्या रिक्वेस्ट है। पापा बोला, डू एज आई एम डूइंग। बड़ी छोटी सी बात है। तो सब जैसा मैंने किया है वैसा आप लोग करिए। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रभुपाद ने क्या क्या नहीं किया, है ना। तो हम लोगों को साधु बनना है। हम बोलेंगे नहीं, हम तो साधु नहीं है। नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है, अपने शिष्यों को बोला है, नाउ गेट द क्वालिफिकेशन टू सी कृष्ण फेस टू फेस। आप ये योग्यता प्राप्त करें कि हमें से हर कोई कृष्ण को आमने सामने देख सके। प्रभुपाद हमसे ये अपेक्षा करते हैं, प्रभुपाद चाहते हैं कि हमें से हर कोई एक आदर्श आचार्य बने, हजारों हजारों आचार्य हुए सोसाइटी में, फकौला ये सोसाइटी बनाई गई है महाजन क्रिएट करने के लिए, जो कि पूरे सोसाइटी का मार्ग, जनसाधारण का मार्गदर्शन कर सके। और इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर किसी को 16 माला का ध्यान पूर्वक जप और चार नियमों का सावधानी से पालन करना। अगर हम अपनी शुद्धता बनाए रखेंगे तभी हम इस संदेश को सही ढंग से समझ पाएंगे और इसको सही ढंग से आगे ट्रांसफर कर पाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और अगर हम सही ढंग से अपनी शुद्धता नहीं रख पाएंगे तो सही ढंग से आगे संदेश को भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए ये संदेश आगे पहुंचे ये देवताओं का काम है, ये ऋषियों का काम है। और जो असुर गणों से इसका विरोध किया जाएगा उस विरोध का विरोध करने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे अंदर शुद्धता, प्रभुपाद कहते हैं प्योरिटी इज अ फोर्स। तो जितना हम सही ढंग से प्रभुपाद के आंदोलन को समझेंगे और इस ज्ञान को अपने जीवन में अनुशीलन करेंगे उतने अच्छे ढंग से हम इसका प्रचार कर पाएंगे। हम अपनी चेतना के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड पे क्या प्रभाव डालते हैं ये निर्भर करता है हमारी शुद्धता के ऊपर। हर भक्त अपनी शुद्धता से पुनः अपने आसपास के वातावरण को बदल सकता है। हम देखते हैं जब भी एक शुद्ध भक्त आता है उसके प्रेजेंस मात्र से ही हमारे अंदर सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उनके दर्शन करने मात्र से ही कि हमारे में उत्साह बढ़ता है कि हम भी सेवा कर सकें। तो क्यों ना हम ऐसे चलते फिरते एक आदर्श उदाहरण बने, ये हमारे लिए संभव है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए अगर हम सही ढंग से प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझें और अपने जीवन में उतारें और इस ढंग से ज्ञान का आगे प्रचार करें तो निश्चित रूप से हम पूरे इस संसार की स्थिति को बदल सकते हैं। आज हम देखते हैं संसार की कितनी दुर्दशा हो रही है, सोसाइटी का कितना तीव्र गति से पतन हो रहा है। कल हम परसों किसी विद्यार्थी से बात कर रहे थे, बोले अभी हम फोर्थ ईयर में हैं और जब हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को देखते हैं हमें लगता है कि जनरेशन गैप हो गया है, 3 साल में इतना तीव्र गति से पतन हो रहा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, समाज में कोई वैल्यूज नहीं रह गई, कोई चरित्र नहीं रह गया, तो कहां जाएगा यह समाज। और पूरे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्णा भानंद आंदोलन ही एकमात्र उम्मीद की किरण है और वो टॉर्च लाइट है, वो हम सबके हाथ में है। तो हमारा ये कर्तव्य मानता है कि हम बाहर निकले और लोगों का मार्गदर्शन करें और उसके लिए हमें सही ढंग से इस वैदिक शास्त्रों को, भव्यता ज्ञान को समझना होगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा और तभी हम माध्यम बन सकते हैं। इसलिए इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है और इस सौभाग्य हम पूरा लाभ उठाएं। आज जो गीता वितरण का यह महीना है इसमें खूब भव्यता का वितरण करें। केवल भगवदगीता वितरण करने से ही काम नहीं होगा, उसके बाद हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है, एजुकेशन और उसके बाद कल्चर, एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें लोग भगवदगीता पढ़ने के लिए प्रेरित हो। प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं इस पूरे संसार की दुर्दशा की जिम्मेवारी भारतीयों की है, क्योंकि भारतीयों ने सही ढंग से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया और इसका आगे प्रचार नहीं किया। तो हम सबका यह कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमें जो भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है ये केवल बाय चांस नहीं है, ये कृष्ण के द्वारा हम चुने गए हैं, तो इसलिए ये जिम्मेवारी है। आज के समाज में लोग किसी भी नेता को चुन लेते हैं और वो लोग नेताओं को चुनते हैं कि वो हमारे मांगों को पूरा करे, और जो नेता होता है वो भी क्या करता है किसी ना किसी से कुछ मांगे पूरी कर दूं मैं पॉपुलर हो जाऊं ताकि अगली बार फिर चुना जाऊं। बस ये एक दूसरे की इंद्र तृप्ति करने में हम लगे हैं नेता और जो जनता, लेकिन नेता यह नहीं सोचता कि जनता को क्या चाहिए, उनके लिए क्या आवश्यक है। भगवद गीता के संदेश के अनुसार नेता को कैसा होना चाहिए कि वो उनको एजुकेट करे कि क्या आपके लिए अच्छा है, कितना जरूरी है वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना। अम्बरीश महाराज के काल में अम्बरीश महाराज के नागरिक इंद्र तृप्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इंद्र तृप्ति के बारे में उनके मन में विचार ही नहीं आता था, ऐसे उत्कृष्ट आप देखिए थे नागरिक में। और पूरे राज्य के हर नागरिक एकादशी का व्रत रखता था, ऐसे उत्कृष्ट चेतना होनी चाहिए। यह राजा का कर्तव्य है कि राजा खुद भी रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी जनता को भी रिस्पॉन्सिबल बनाए। लेकिन जो ये आजकल आधुनिक युग है ये गैर जिम्मेवारी का जीवन है, कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। लोग समझते हैं जितनी जिम्मेवारी उठाएंगे उतना हमारा आनंद कम हो जाएगा। बचपन से कोई स्कूल में ट्रेनिंग नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल बने, तो ऐसे गैर जिम्मेवार लोग, इरिस्पॉन्सिबल लोग किस लीडर को चुनेंगे जो उनकी इन मांगे पूरी करें? और जो लीडर है वो भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे मालूम अगली बार मुझे आना है, वो पॉपुलर बनना चाहेगा, वो भी इरिस्पॉन्सिबल है। लीडर इरिस्पॉन्सिबल है, लोग भी इरिस्पॉन्सिबल है, तो आगे क्या हम पढ़ेंगे? तो इसलिए हमारा एक कर्तव्य है कि हम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, और जितना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में उसको उतनी कृपा मिलेगी, और हम हमारा भी शुद्धिकरण होगा और हम माध्यम बने दूसरों के शुद्धिकरण में, ताकि ये जो वैदिक अथॉरिटी है ये लुप्त ना हो जाए। ये बहुत बड़ा जो एक कलयुग का प्रभाव आगे बढ़ता जा रहा है, इस कलयुग के प्रभाव को हम रोक सकते हैं केवल संकीर्तन के माध्यम से, इस भगवान के नाम, भगवान के रूप गुण लीलाओं के प्रचार के माध्यम से। इससे हमारा भी भला होगा और बाकी सबका भी भला होगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? आत्मा का एक रूप है, आत्मा एक पुरुष व्यक्ति है, आइडेंटिटी है, आत्मा इज अ पर्सन। पर्सन मीन्स फॉर्म, फॉर्म मीन्स इंद्रिया, सारी इंद्रिया।
हरे कृष्ण। आपने बताया वन वे इज इन्वॉल्व इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अ डेमन, और वन इज इन्वॉल्व इन सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण इज अ डेमन। बट वी सी, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि एक ही व्यक्ति में वो कभी दाना भी बन जाता है, कभी देवता भी बन जाता है। तो एकदम से हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते कि ये कैटेगरी देवताओं की है और ये जो है सेम व्यक्ति
दोनों। बिल्कुल ठीक बात है, एक ही व्यक्ति में हमारे अंदर असुर प्रवृत्तियां भी हैं और देवताओं की प्रवृत्ति भी है, तो हमें क्या करना है? अपनी देवताओं की प्रवृत्ति को बढ़ाना है और असुर प्रवृत्ति को कम करना है। और डेफिनेशन यही है, जब भी हम इंद्र स्थिति में लिप्त हैं हम असुरी प्रवृत्ति में लिप्त हैं। प्रभुपाद गिव्स दिस डेफिनेशन, तो हमारे अंदर ही असुर भी है और देवता भी है। तो अपने जीवन को इस ढंग से ढालना है कि हमारी आसुरी प्रवृत्ति कम हो और देवताओं की प्रवृत्ति बढ़े। यस,
कभी जैसे आपने बताया कि जो कृष्ण है वो अपना एक्सपेंशन कभी कभी जो है इंद्र के रूप में और ब्रह्मा जी के रूप में, मतलब यूनिवर्सल मैनेजमेंट के लिए करते हैं, तो फिर देवताओं की पूजा जैसे इंद्र की पूजा या ब्रह्मा जी की पूजा को इतना मतलब क्यों वो करते हैं? जैसे कृष्ण ही हैं, कृष्ण खुद भी खुद इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं, तो इतनी भर्सना जैसे देवताओं की पूजा की गई है, भगवत खुद भगवान ही करते हैं, तो इसको कैसे मतलब
देवताओं की पूजा की कहीं भर्सना नहीं की गई, देवताओं की पूजा करने वालों की भर्सना की गई।
हाँ, मतलब उन्हीं की।
हाँ,
क्यों? इन्हें भी तो वो भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं।
हाँ, उनके भगवान के सारी पूजा तो इनडायरेक्टली भगवान के ही है, सब कुछ भगवान का ही एनर्जी है। एनर्जी की भगवान की शक्ति की पूजा करें तो इनडायरेक्टली भगवान की ही पूजा हो रही है। भगवान कहते हैं वो अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक क्या है? डायरेक्टली मेरे को सरेंडर करो। क्योंकि संसार में भगवान से विमुख हुए कई श्रेणी के लोग हैं, और उनमें भगवान के प्रति विमुख होने की अलग अलग डिग्री है। कोई सत्वगुण में प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता, किसी में तमोगुण की प्रधानता। हर कोई भगवान से विमुख है, लेकिन उसकी श्रेणी अलग अलग है, तो उसके अनुसार ही अलग अलग पुराणों का और अलग वैदिक शास्त्रों की रचना की गई है। किसी ना किसी ढंग से भगवान की सीमा में जुड़े।
और दूसरा क्वेश्चन एक और था जो आपने बताया कि अमरीश महाराज के राज्यकाल में जितने भी व्यक्ति थे वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के थे, और कोई भी साइंस ग्रेजुएशन में, तो इसको मतलब फिर भी वो बदजीव थे, तो इसको कैसे समझा जाए?
बदजीव है, लेकिन अपने जो संसार में जो उत्कृष्टतम चेतना हो सकती है उसमें स्थित थे। निश्चित रूप से उनका आखिरी जीवन है, उसके बाद भगवत बन जाएंगे।
अगर आप क्या हम लोग सीख सकते हैं, वी कैन कैरी
अगर आप उस पर तो हाईलाइट।
थैंक यू भैया, अच्छा प्रश्न है आपका। जो मैं समझ पा रहा था, मैं भी इस पर मेडिटेट कर रहा था कि व्हाट इज द वन मैसेज आई कैन टेक इट फ्रॉम माय लाइफ, वो ये था कि अगर हम हमेशा याद रखें अपने हर कार्य, अपने हर विचार, अपने हर इच्छा के पीछे कि इज इट इन लाइन विद द पर्पज ऑफ क्रिएशन, कि ये हमारा जो सृष्टि का करने का उद्देश्य है, हम यहां पे क्यों हैं, ये कभी भूले ना। तो मेरे ख्याल से हम लोग अपने आप को रोक सकते हैं नित्यप्ति करने से, उनका अपने कार्यों में लिप्त होने से, कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई है हमें मौका देने के लिए कि हम अपने को शुद्ध करें। तो हमारे पास वैसे लिमिटेड समय काल है, सीमित समय हमारे पास, सृष्टि की रचना इसीलिए हुई है, मैं इसीलिए इस सृष्टि में आया हूं, तो मेरा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और अगर एज ए मैं लीडर हूं तो मुझे और सावधान होना चाहिए। यस
जैसे आपने दुनिया की अस्त हो जाए, हो रहा है दुनिया, हर चीज का स्तर गिर रहा है, तो हमारा शब्द ही ऐसा है ओमिशन, जिससे दुनिया चलानी है ओमिशन है, ओ जिसका सर, ओ जिसका सर ओ को वो दुनिया चला रहा है, ओमिशन
ऑफिसर
ओ है जिसका सर, और आपका जो सर माने तो पाएंगे
ऑफिसर। अच्छा यस
सर, एजुकेशन कल्चर एंड डिवोशन, तो कल्चर पे थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे, किस प्रकार से खुद को भी प्रेरित रखा जाए कल्चर फॉलो करने के लिए, वास्तव में कल्चर थोड़ा सा डिटेल में बताएं, कल्चर क्या चीज है, गिविंग द राइट एनवायरमेंट फॉर अदर्स टू फॉलो, इसको करने के लिए वन हैज टू सेल्फ फॉलो वेरी पक्का तरीके से, और व्हाट इज दैट राइट एनवायरमेंट सो दैट अदर्स कैन बी एनकरेज।
हाँ, तो एक्चुअली बहुत बड़ा विषय है, पीछे कौन थे प्रभु आए थे, उन्होंने पूरा कल्चर के ऊपर लिया था कि कैसे हम अपने हम कल्चर इंजीनियर्स बन सकते हैं, पूरे सोसाइटी के कल्चर्स को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, बाहरी रूप से हमारे हृदय में संस्कार कैसे हैं, और हम अपने क्या वैल्यूज बताते हैं लोगों को, ये हमारी वैल्यू है, हम क्या बोलते हैं, क्या अंदर से सोचते हैं, और क्या हमारे एक्शंस हैं, थॉट डीड्स एंड एक्शंस, इससे हम कल्चर प्रभावित कर सकते हैं, है ना, अपने वाणी से, अपने विचारों से और अपने कार्यों से। अगर वो तीनों एक लाइन में है तो निश्चित रूप से कल्चर प्रभावित होगा, ये मैं देखना चाहिए।
इसे आपने बताया कि जो देवता है उनका भी जो है मतलब जो उद्देश्य है वो भगवान के उद्देश्य पर निर्भर है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो देवता हैं वो भी अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, तो मतलब जिनको भगवान ने नियुक्त किया है जीवों के लिए, तो जीव कैसे इस चीज से बचें कि वो अपने उद्देश्य से ना भटकें।
तो इसके लिए क्या प्रश्न आपको, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं तीसरे स्कंद के 90 अध्याय में, जब सृष्टि का उनको ऑर्डर मिलता है करने का, तो ब्रह्मा जी मुझे खूब प्रार्थनाएं करते हैं कि आप मुझे सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी, इतना बड़ा कार्य दिया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं रजोगुण के प्रभाव में ना अपने आप को करता ना मानू। इसके अलावा बृहद भागवत मृत में भी ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे सृष्टि का कर्ता बनाया आपने, ये कोई भगवान की कृपा नहीं है, ये तो एक ऑफिशियल पोस्ट है, इसमें कोई भक्ति नहीं है, बल्कि ये बड़ा खतरनाक काम है, इसमें भगवान को भूलने के चांसेस ज्यादा है। और ऐसे ढंग से प्रभुपाद भी आप देखते हैं भागवतम के आमुख में लिखते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है इतना बड़ा कार्य करने के लिए, ये तो गुरु की कृपा से मैं कर लूं। तो इसलिए जो देवतागण कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन देवताओं की ये प्रार्थनाएं रहती है, वो तुरंत वापस भी आ जाते हैं चेतना में और अपनी गलती रियलाइज करके भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो कोई भी लीडर के लिए यह बहुत बड़ा एक खतरा तो रहता ही है कि वो ऐसे कार्य को करते करते अपने आप को कर्ता मानने लगे, भगवान की कृपा को गुरु की कृपा को भूल जाए। तो हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि जो मुझे शक्ति मिल रही है मेरी शक्ति नहीं है, ये मुझे शक्ति दी जा रही है ऊपर से, सारी योग्यता ऊपर से आ रही है। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव नंद की, प्रेमानंदे।